नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। निर्वाचन आयोग ने असम, केरल, पुद्दुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों की घोषणा की। असम, केरल और पुद्दुचेरी में 9 अप्रैल को और तमिलनाडु में 23 अप्रैल को एक चरण में मतदान। पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को दो चरणों में मतदान। आयोग ने 6 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव की भी घोषणा की। मतगणना 4 मई को होगी। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमरीका ईरान के साथ किसी भी समझौते के लिए तैयार नहीं। अमरीका और इसराइल ने ईरान पर फिर से हमले शुरू किए। और बैंकॉक में विश्व फ्यूचर्स कप मुक्केबाजी में भारत ने 1 स्वर्ण सहित 5 पदक जीते। और अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने आज असम, केरल, पुद्दुचेरी और तमिलनाडु में एक चरण में और पश्चिम बंगाल में दो चरणों में चुनाव कराने की घोषणा की। मतगणना 4 मई को होगी। नई दिल्ली में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने यह जानकारी दी।
126 असम की 126 विधानसभा सीटों, केरल की 140 सीटों और पुद्दुचेरी के 30 सीटों पर एक चरण में 9 अप्रैल को मतदान होगा। तमिलनाडु की 234 सीटों पर एक ही चरण में 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। वहीं पश्चिम बंगाल में दो चरणों में 152 सीटों पर 23 अप्रैल को और 142 सीटों पर 29 अप्रैल को मतदान होगा।
असम, केरल और पुद्दुचेरी में विधानसभा चुनाव की अधिसूचना कल जारी की जाएगी। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना 30 मार्च को जारी की जाएगी। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान की अधिसूचना 2 अप्रैल को जारी की जाएगी। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि 5 विधानसभाओं के 824 निर्वाचन क्षेत्रों के चुनावों में लगभग 17,40,00,000 लोग मतदान के पात्र हैं। कुल 2,19,000 मतदान केंद्र होंगे और कुल 25,00,000 चुनाव कर्मियों को तैनात किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर पेयजल, शौचालय और साइनबोर्ड जैसी न्यूनतम सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में चुनाव को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए निर्वाचन आयोग ने 30 नई पहल की हैं। श्री कुमार ने कहा कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर अधिकतम 1200 मतदाता ही मतदान कर सकेंगे। सभी मतदान केंद्रों पर निगरानी के लिए 100% वेबकास्टिंग होगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि किसी भी लोकतंत्र की नींव निष्पक्ष मतदाता सूची होती है।
संविधान के अनुच्छेद 326 के अंतर्गत विशेष गहन पुनरीक्षण किया जा रहा है। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि कोई भी पात्र मतदाता छूट न जाए और कोई भी अपात्र मतदाता सूची में शामिल न हो। इस कार्य के सुचारू संचालन और सफल समापन में शामिल सभी चुनाव अधिकारियों को मैं बधाई देता हूँ।
श्री कुमार ने कहा कि निर्वाचन आयोग चुनाव के दौरान राजनीतिक हिंसा बर्दाश्त नहीं करेगा।
जहाँ तक चुनावी प्रक्रिया का सवाल है, इलेक्शंस इन इंडिया आर हेल्ड एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, द लॉ एंड द इंस्ट्रक्शंस। राजनीतिक हिंसा और चुनाव को प्रभावित करने वाले कोई भी इंड्यूसमेंट को चुनाव आयोग बर्दाश्त नहीं करेगा और ऐसे करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी।
आयोग ने 6 राज्यों के 8 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव की भी घोषणा की है। इसमें गोवा की पोंडा सीट, गुजरात की उमरेठ, कर्नाटक की बागलकोट और दावनगिरी दक्षिण, महाराष्ट्र में राहुरी और बारामती, नागालैंड में कोरीडांग और त्रिपुरा की धर्मनगर सीट हैं। गोवा, कर्नाटक, नागालैंड और त्रिपुरा में अधिसूचना कल जारी की जाएगी और मतदान 9 अप्रैल को होगा। गुजरात और महाराष्ट्र में अधिसूचना 30 मार्च को जारी की जाएगी और मतदान 23 अप्रैल को होगा। सभी सीटों की मतगणना 4 मई को होगी। निर्वाचन आयोग ने कोलकाता पुलिस आयुक्त से कल गिरीश पार्क में भाजपा और तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प के दौरान केंद्रीय बल का उपयोग नहीं किए जाने के संबंध में रिपोर्ट मांगी है। ये झड़प तब हुई जब भाजपा समर्थक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में शामिल होने जा रहे थे। झड़प में 8 पुलिसकर्मी और दोनों पक्षों के कई समर्थक घायल हो गए। पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया है। अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में एलपीजी वितरकों के पास गैस आपूर्ति की कोई कमी नहीं है। मंत्रालय ने बताया कि एलपीजी बुकिंग में गिरावट आई है। कल लगभग 77 लाख बुकिंग दर्ज की गई, जबकि इस महीने की 13 तारीख को लगभग 88 लाख बुकिंग दर्ज की गई थी। वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर भी प्राथमिकता के आधार पर वितरण के लिए राज्य सरकारों को सौंप दिए गए हैं और अब उपभोक्ता के लिए उपलब्ध हैं। मंत्रालय ने बताया कि तेल विपणन कंपनियों द्वारा खुदरा दुकानों पर ईंधन की कमी का कोई मामला सामने नहीं आया है और पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति नियमित रूप से जारी है। मंत्रालय ने लोगों से घबराहट में खरीदारी न करने की सलाह दी है। इस बीच मंत्रालय ने पीएनजी और एलपीजी गैस कनेक्शन रखने वाले परिवारों को तत्काल प्रभाव से एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करने का निर्देश दिया है। पीएनजी कनेक्शन रखने वाले किसी भी व्यक्ति को घरेलू एलपीजी कनेक्शन रखने या वितरकों से एलपीजी रिफिल कराने की अनुमति नहीं होगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि युद्ध का स्वरूप तेजी से प्रौद्योगिकी आधारित होता जा रहा है। इसमें उन्नत प्रौद्योगिकियां राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक तैयारियों में निर्णायक भूमिका निभा रही हैं। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान जैसे क्षेत्र देश की भविष्य की सुरक्षा संरचना और राष्ट्रीय विकास को आकार देने में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को पत्र लिखकर लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा और प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए गंभीर चिंतन और आत्मनिरीक्षण का आग्रह किया है। पत्र में श्री बिरला ने कुछ सांसदों द्वारा सदन के भीतर बैनर, तख्तियां, पोस्टर प्रदर्शित करने और आपत्तिजनक भाषा के प्रयोग पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि इस स्थिति पर हम सभी को व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से गंभीरता पूर्वक विचार करना आवश्यक है। इस बीच श्री बिरला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में गहरी आस्था रखते हैं और देश के संसदीय लोकतंत्र के नियमों और परंपराओं में उनका अटूट विश्वास रहा है। उनका ये बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उन्हें लिखे पत्र के जवाब में आया है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री के पत्र में सार्वजनिक सेवा के उन सर्वोच्च नैतिक मूल्यों की अभिव्यक्ति है जिन्हें श्री मोदी ने अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में कायम रखा है। पत्र में श्री मोदी ने लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को अस्वीकार किए जाने पर सांसदों को बधाई दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम एशिया संघर्ष 16वें दिन भी जारी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ किसी भी समझौते के लिए तैयार नहीं है। वहीं अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर फिर से बड़े हमले किए हैं। ईरान के औद्योगिक शहर इस्फहान पर कई हमले हुए हैं जिनमें 15 लोगों के मारे जाने की खबर है। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इसराइल के ठिकानों पर मिसाइल हमले किए हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
संयुक्त अरब अमीरात में ऊर्जा और नौवहन गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। शनिवार को ड्रोन हमले और आग लगने से बंदरगाह पर अस्थायी रूप से बाधित हुई तेल की लोडिंग अब फिर से शुरू हो गई है। रविवार को 80,000 टन से अधिक के क्रूड तेल वाला एक भारतीय जहाज फुजेराह से भारत के लिए रवाना हुआ। फुजेराह पाइपलाइन से प्रतिदिन लगभग 10 लाख बैरल क्रूड ऑयल की ढुलाई होती है। ये वैश्विक तेल मांग का लगभग 1% है और ये हॉर्मुज जलडमरों मध्य के बाहर एक प्रमुख निर्यात मार्ग के रूप में कार्य करता है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने पश्चिम एशियाई क्षेत्र में कल से 10 अप्रैल तक होने वाली 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। बोर्ड ने बताया कि पहले स्थगित की गई परीक्षाएं भी रद्द होंगी। पश्चिम एशियाई क्षेत्र में कक्षा 12 के परीक्षार्थियों के लिए परिणाम का तरीका बाद में घोषित किया जाएगा। बारामूला जिले के उरी सेक्टर में आज सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में एक पाकिस्तानी आतंकवादी मारा गया। शनिवार और रविवार की मध्यरात्रि को बुच्छर इलाके में नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया गया। घटनास्थल से बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए फास्टैग वार्षिक पास के लागू शुल्क को ₹75 बढ़ाकर ₹3,075 करने की घोषणा की है। बढ़ा हुआ शुल्क 1 अप्रैल से लागू होगा। ये पास वैध फास्टैग वाले सभी गैर व्यावसायिक वाहनों के लिए लागू है। सरकार ने पद्म पुरस्कार 2027 के लिए नामांकन और अनुशंसाएं आमंत्रित की हैं। गृह मंत्रालय ने बताया कि पुरस्कारों की घोषणा अगले वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाएगी। नामांकन की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। नामांकन और अनुशंसाएं केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ही स्वीकार की जाएंगी। बैंकॉक में विश्व मुक्केबाजी फ्यूचर्स कप में भारत ने 1 स्वर्ण और 3 रजत पदक जीते हैं। चंद्रिका पुजारी ने 51 किलो वर्ग में उज्बेकिस्तान की मार्दोनोवा नाजुकट को 5-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। गुंजन ने 48 किलो भार वर्ग में और जॉयश्री ने 54 किलो में रजत पदक जीता, जबकि एल अंबेडकर मितई ने 50 किलो भार वर्ग में रजत पदक अपने नाम किया। राधामणि लोन्जमांग ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता था। मौसम विभाग ने कल बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगा के मैदानी क्षेत्र, झारखंड, ओडिशा और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। अगले 2 दिन तक अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तेज वर्षा का अनुमान है। अगले 2 से 3 दिन तक बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ओडिशा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में बिजली गरजने और तेज हवाएं चलने की आशंका है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे लाइव फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के अवसर पर उपभोक्ता अधिकारों और जिम्मेदारियों पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। श्रोता #AskAIR के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सवाल पोस्ट कर सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने असम, केरल, पुदुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों की घोषणा की। असम, केरल और पुदुचेरी में 9 अप्रैल को और तमिलनाडु में 23 अप्रैल को एक चरण में मतदान। पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को 2 चरणों में मतदान। आयोग ने 6 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव की भी घोषणा की। मतगणना 4 मई को होगी। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमरीका ईरान के साथ किसी भी समझौते के लिए तैयार नहीं। अमरीका और इसराइल ने ईरान पर फिर से हमले शुरू किए। और बैंकॉक में विश्व फ्यूचर्स कप मुक्केबाजी में भारत ने 1 स्वर्ण सहित 5 पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।